بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, फरवरी की 7, शाबान की 12 और मार्च की 27 तारीख। दोस्तों, एक उद्घोषणा सुन लें। कल 28 मार्च से हमारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। 28 मार्च से आप हमारा प्रोग्राम शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9,510 किलो हर्ट्ज पर सुन सकेंगे। प्रोग्राम की रूपरेखा इस प्रकार है, पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पेश होगी, उसके बाद नवरोज का खास प्रोग्राम सुनेंगे और सभा का अंतिम प्रोग्राम है नया सवेरा। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हे आदम की संतान, आने वाले कल की चिंता न कर, क्योंकि अगर तेरी जिंदगी का एक दिन भी बचा होगा तो तेरा पालनहार तेरी रोजी तुझ तक पहुंचाएगा। आप फरमाते हैं कि अपनी जबान की इस तरह रक्षा करो जिस तरह तुम अपने सोने चांदी की रक्षा करते हो, क्योंकि कभी कभी मुंह से निकली हुई बात किसी नेमत के छिन जाने का कारण बनती है। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। और अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और चीन ने 25 वर्षीय व्यापक साझेदारी के समझौते पर दस्तखत किए। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में भारी मतदान हुआ। तेल को लेकर सऊदी अरब के सुझाव पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। और अब आप मोहम्मद अली कुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान और चीन के बीच व्यापक सहयोग के रणनीतिक समझौते पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने दस्तखत किए। संवाददाता के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति के 2015 में ईरान के दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग के समझौते का विचार सामने आया था। यह समझौता ईरान चीन के बीच एक रोडमैप की तरह है, जिससे दोनों देशों के संबंध सामान्य स्तर से रणनीतिक आयाम ले सकते हैं। यह समझौता विभिन्न आयाम पर आधारित संपूर्ण रोडमैप और इसमें राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक अनुच्छेद हैं। इस दस्तावेज में दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के सभी आयाम को मद्देनजर रखा गया है। इसी तरह इस समझौते में दोनों पक्षों के निजी क्षेत्र में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी से भेंटवार्ता की। इरना के मुताबिक शनिवार को वांग यी ने राष्ट्रपति रूहानी से तेहरान में मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले चीनी विदेश मंत्री ने पूर्व ईरानी संसद सभापति अली लारिजानी से मुलाकात की। अली लारिजानी ईरान चीन के बीच 25 वर्षीय व्यापक साझेदारी के मामले की पैरवी कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के विरोध में हुए उग्र प्रदर्शनों के क्रम में हुए उग्र प्रदर्शनों में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के विरोध में इस देश में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने और बड़ी तादाद में अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है। میڈیا کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد راجدھانی ڈھاکہ کے بیت المکرم علاقے میں بھی لوگوں نے ویروت پردرشن کیا. اس دوران پولیس کے ساتھ پردرشنکاریوں کی جھڑپ ہوئی. بنگلہ دیش کے پولیس پرمکھ کے مطابق پولیس کو مجبور ہو کر پردرشنکاریوں پر گولی چلانی پڑی. پولیس نے راجدھانی ڈھاکہ میں لوگوں کے پردرشنوں پر روک لگا رکھی ہے. حفاظت اسلام نامک ایک سنگٹھن نے پہلے ہی بھارت کے پردھان منتری مودی کے دورے کا ویروت کرنے کا اعلان کر رکھا تھا. حفاظت اسلام کے نیتا نے بتایا کہ پردرشن کے دوران ان کے کچھ سمرتھکوں کی موت ہوئی لیکن انہوں نے بھی سنکھیا کو اسپشٹ نہیں کیا. چٹگاؤں اور ڈھاکہ میں ویروت پردرشنوں کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ نے بھارتی پردھان منتری مودی کی یاترا کو بادھت کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کا آدیش دیا ہے. پشچم بنگال اور اسم میں ودھان سبھا چناؤ کے پہلے چرن کے لیے بھاری متدان ہوئے. شنیوار کو پشچم بنگال میں پہلے چرن کے متدان میں شام 5 بجے تک 77.99% ووٹ پڑے. راجیہ میں چھٹ پٹ ہنسک گھٹناؤں کی بھی رپورٹیں ملی ہیں. پشچم بنگال میں پہلے چرن میں پرولیا کی 9, بانکوڑا کی 4, جھاڑ گرام کی 4, پشچمی میدنی پور کی 6 اور پوروی میدنی پور کی اتی مہتوپورن 7 سیٹوں کے لیے متدان ہوا. نندیگرام میں ستاداری ٹی ایم سی اور بی جے پی کارکرتاؤں کے بیچ مار پیٹ کی رپورٹ ہے جس میں کم سے کم 3 لوگ گھائل ہوئے. ادھر ٹی ایم سی کے سانسد ڈیرک اوبرائن نے چناؤ آیوگ کو خط لکھ کر کئی جگہوں پر لگاتار ووٹ فیصد بدلنے کی شکایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ کانتھی دکشن اور کانتھی اتر میں صبح 9:13 پر ووٹر ٹرن آؤٹ کرمشہ 18.47% اور 18.59% رہا تھا لیکن 4 منٹ بعد اسے بدل کر 10.60% اور 9.40% کر دیا گیا. یہ گڑبڑی الیکشن کمیشن کے ڈیٹا پر سوال کھڑے کرتا ہے. پشچم بنگال میں 8 چرن میں ودھان سبھا چناؤ ہوں گے. ادھر اسم ودھان سبھا میں پہلے چرن کے لیے شام 5:30 تک 72.16% ووٹنگ ہوئی. پہلے چرن کے لیے 47 سیٹوں پر متدان ہوئے. اسم میں 3 چرنوں کے لیے ودھان سبھا چناؤ ہوں گے. دوسرے چرن کے لیے 1 اپریل اور تیسرے چرن میں 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے. بھارت کے پیٹرولیم منتری دھرمیندر پردھان نے اپنے سعودی سمکش کے سجھاؤ کو غیر کوٹنیتک بتاتے ہوئے اسے نراشا جنک بتایا ہے. سعودی عرب کے پیٹرولیم منتری پرنس عبدالعزیز بن سلمان نے کہا تھا کہ بھارت کو تیل اتپادک دیشوں سے قیمتیں کم کرنے اور اتپادن کو بڑھانے کی مانگ کرنے کے بجائے اپنے اس رڑنیتک تیل بھنڈار سے تیل نکالنا چاہیے جو اس نے پچھلے سال بہت سستی قیمت پر خرید کر بھنڈار کر رکھا ہے. سعودی پیٹرولیم منتری کے اس بیان کو غیر کوٹنیتک بتاتے ہوئے بھارت کے پیٹرولیم منتری دھرمیندر پردھان نے کہا کہ دیش کی اس بارے میں اپنی رڑنیتی ہے کہ وہ رڑنیتک تیل بھنڈار کو کب اور کتنا نکالے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتوں کو لے کر سترک ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی متر دیش کی اور سے اس طرح کا سجھاؤ بہت ہی غیر کوٹنیتک ہے. دھرمیندر پردھان نے کہا کہ آرتھک ایوم رڑنیتک فیصلے کرتے وقت بھارت اپنے ہتوں کو مد نظر رکھتا ہے. یاد رہے کہ بھارت وشو کا تیسرا سب سے بڑا تیل آیات کرنے والا دیش ہے. 26 مارچ کو یمن یدھ کو پورے 6 سال ہو گئے. اس اوسر پر پورے دیش میں یدھ کے خلاف وشال ریلیوں کا آیوجن ہوا لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے معارج اور حجہ پرانت پر بمباری کی. یمنی ٹی وی چینل المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق شکروار کو سعودی لڑاکو ویمانوں نے معارب کے مدغل اور سرواہ علاقوں پر درجنوں بم گرائے. پچھلے کچھ ہفتوں سے معارب میں یمنی سینا اور اس کے گھٹک سوئم سے بھی بلوں تتھا سعودی سمرتھن پراپت پورو راشٹرپتی منصور ہادی کے لڑاکوں کے بیچ بھیشن لڑائی جاری ہے. معارب کے مورچے پر یمنی سینا اور الحوثی آندولن کو مہتوپورن سفلتائیں ملی ہیں جس سے سینا اور آندولن کے لڑاکوں کا منوبل کافی بڑھا ہوا ہے. ایک زائونی اخبار نے لکھا ہے کہ امریکہ کا سمرتھن پراپت کردوں سے بہت ہی سستے داموں پر اسرائیل تیل خرید رہا ہے. ورتمان سمے میں کہ جب تیل کی آپورتی کو لے کر وشو کے کئی دیشوں کو سمسیاؤں کا سامنا اور تیل مولیوں میں اچھال دیکھنے میں آ رہا ہے, اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا کہ پوروتری سیریا میں موجود امریکہ کا سمرتھن پراپت کردوں سے اسرائیل بہت ہی سستے داموں میں تیل خرید رہا ہے. اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے اپنے شکروار کے سنسکرن میں ایک لیکھ پرکاشت کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ سیریا کے ڈیموکریٹک کردوں کے مادھیم سے جن کو امریکہ کا سمرتھن حاصل ہے اسرائیل کوڑیوں کے بھاؤ سیریا کا تیل خرید رہا ہے. اسرائیل کی ستاداری لیکوڈ پارٹی کے سدسیوں نے بنیامین نتنیاہو کی آلوچنا کی اور کہا کہ انہوں نے پارٹی کے سدسیوں سے مشورہ کیے بنا چناوی پرکریا کو آگے بڑھایا۔ لیکوڈ پارٹی کے سدسیوں نے کہا کہ نتنیاہو نے چناوی پرچار کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ وہ لیکوڈ پارٹی کو 40 سیٹ پر وجئی بنائیں گے، جبکہ اس پارٹی کو صرف 30 سیٹیں ملی، جو 2 سال کے بھیتر اسرائیل میں چوتھے چناؤ کا سب سے خراب نتیجہ ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کے مطابق لیکوڈ پارٹی کے ورش سدسیوں نے یہ سہمتی کی تھی کہ وہ خاموش رہیں گے اور نتنیاہو جو کریں گے، جو کہیں گے اسے کریں گے، تاکہ وہ پارٹی کو سطح تک پہنچائیں، لیکن لگاتار پچھلے 4 چناؤں میں ایسا نہیں ہوا اور اسرائیل میں پچھلے 2 سال میں ایک کے بعد ایک 4 سنسدی چناؤ ہوئے۔ پچھلے 2 سال میں اسرائیل میں 4th سنسدی چناؤ بھی اس شاسن کے بھیتر راجنیتک گتیرودھ کو دور نہیں کر پایا اور نتنیاہو کے وچاروں سے سہمت دل بہمت حاصل نہیں کر پائے۔ لیکوڈ پارٹی کے نیتا نتنیاہو کو اس ناکامی کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ صاف طور پر قطر سمجھوتے کا الگھن کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ طالبان نے کہا کہ دوحہ سمجھوتا افغانستان میں کم اودھی میں شانتی استھاپت کرنے کا سب سے مہتوپورن سمجھوتا ہے۔ طالبان کے مطابق نردھاری سمے پر ودیشی وشیش کے امریکی سینکوں کے دیش سے واپس نہ جانے سے افغانستان میں شانتی استھاپت کرنے میں سمسیائیں آئیں گی۔ امریکی راشٹرپتی نے کہا کہ تکنیکی کارنوں سے نردھاری سمے پر امریکی سینکوں کا افغانستان سے نکلنا بہت کٹھن ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے کہا کہ نیت سمے سے پہلے اس دیش کے سینک افغانستان سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ 1 مئی تک افغانستان سے نکلنے کے سمبندھ میں جو سمجھوتا ہوا ہے اس پر عمل کٹھن ہے۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن اتری کوریا کی ستاروڑھ پارٹی کی کیندری سمیتی کے سچیو نے میزائل پریکشن کے بارے میں امریکی راشٹرپتی بائیڈن کی پرتکریا کو شترتاپورن بتایا ہے۔ رویٹرز کے مطابق ری بیونگ چول نے اس دیش دوارا حال ہی میں کیے گئے میزائل پریکشن پر امریکی راشٹرپتی کی پرتکریا کے سندرب میں کہا کہ نئی امریکی سرکار نے معاملے کو غلط ڈھنگ سے سمجھا۔ امریکی سینیٹروں نے دوسرے دیشوں کو اسرائیل کے ساتھ سمبندھ سامان کرنے کے لیے پریرت کرنے کے ادیش سے ایک مسودہ تیار کیا ہے۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق امریکی سینیٹروں کے گٹ نے امریکی کانگریس میں ایک پرستاؤ پیش کیا جس میں وشو کے دیشوں کو اسرائیل کے ساتھ سمبندھ سامان کرنے کے لیے پریرت کیا گیا ہے۔ یہ گٹ 18 سینیٹروں پر آدھارت ہے، جس میں آدھے ڈیموکریٹس ہیں جبکہ آدھے کا سمبندھ ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं हसन अब्बास और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम ज़ायोनी शासन के अवैध कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन के विषय पर एक रिपोर्ट सुनवाएंगे। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बाहर निकालने के अपने वादे को वाशिंगटन द्वारा एक बार फिर तोड़े जाने के विषय पर भी एक रिपोर्ट कार्यक्रम में शामिल रहेगी। कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले देशों से विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील पर भी आप एक रिपोर्ट सुनेंगे, जिसके बाद कश्मीर से हमारे संवाददाता कश्मीर की स्थिति के बदलाव के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग के विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। تو شروع کرتے ہیں ذائن شاسن کے اوید قبضے کے خلاف فلسطینیوں کے پردرشن کے وشے سے۔ پشمی تٹ کے اتری کشیتر میں سیکڑوں فلسطینیوں نے اسرائیل دوارا اپنی ماتر بھومی پر قبضے کے خلاف پردرشن کیا اور کہا کہ جب تک اوید قبضہ ختم نہیں ہوتا ان کا پردرشن جاری رہے گا۔ एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं खालिद सबरना, जिसे आवाज दी हमारे साथी कायम रिजवी ने।
مئات الفلسطينيين تظاهروا في بلدة بيت دجن شمال الضفة
سیکڑوں فلسطینیوں نے پشچمی تٹ کے اتری علاقے بیت دجن میں اس استھان پر جسے زائونی شاسن نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے پردرشن کیے پچھلے ہفتے اس علاقے میں رہنے والے عاطف ہنایشا اپنی ماتربھومی کی رکشا کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے فلسطینی ایک بار پھر اس علاقے میں واپس آ گئے ہیں اور زائونیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں اس پردرشن میں دو فلسطینی زائونی سینکوں کی فائرنگ میں بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں
ظلم حداش بتحملو
ظلم کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا یہ ہماری ماتر بھومی ہے ہم اس کی رکشا کریں گے اگر کوئی آ کر دیش کی زمین پر قبضہ کر لے تو کیا یہ صحیح ہے
وقعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
پشچمی تٹ کے وبھن علاقوں میں فلسطینی اپنی ماتر بھومی پر اویدھ قبضے اور زائونی کالونیوں کے نرمان کے خلاف پرتیرودھ کر رہے ہیں کالونیوں میں رہنے والے زائونی اسرائیلی سرکشا بلوں کی مدد سے زائونی شاسن کے آدیش پر فلسطینیوں کی زمینوں کو چرا رہے ہیں
الشعب الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال
فلسطینی راشٹر اویدھ قبضے اور آتنکواد کو سہن نہیں کرے گا زائونی شاسن زمینوں پر اویدھ قبضے کے آدھار پر ٹکا ہوا ہے
دفاع عن الارض
ان علاقوں میں پردرشن کرنے والوں نے اس ہفتے کو ماتر بھومی کی رکشا اور اس شہید کا نام دیا ہے جس کا خون پچھلے ہفتے اسی علاقے میں بہا تھا ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی زمین کی رکشا کے لیے تب تک ڈٹے رہیں گے جب تک ان علاقوں سے زائونی پوری طرح سے باہر نہیں نکلتے فلسطین سے آئی آر آئی بی کے لیے خالد صبرنا کی رپورٹ
امریکہ ایک بار پھر افغانستان سے اپنے سینکوں کو واپس نکالنے کے وعدے سے مکر گیا ہے طالبان کے ساتھ ہوئے سمجھوتے میں امریکہ نے یہ بات مانی تھی کہ 1 مئی تک اس کے سبھی سینک افغانستان سے نکل جائیں گے لیکن اب امریکہ کے نئے راشٹرپتی جو بائیڈن نے اسے تکنیکی کارنوں سے اسمبھو بتا دیا ہے بہنام یزدانی کی رپورٹ سنیے روش زیدی کی زبانی
امریکہ فی الحال افغانستان سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے ایسی استھتی میں کہ جب طالبان کے ساتھ ہوئے امریکہ کے سمجھوتے کے آدھار پر اگلے لگ بھگ 1 مہینے کے بعد افغانستان میں موجود سبھی ودیشی سینکوں کو اس دیش سے نکل جانا ہے امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں افغانستان سے ان کے دیش کے سینکوں کی سودیش واپسی سمبھو نہیں ہے تکنیکی کارنوں سے بہت مشکل ہے کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی سینکوں کے باہر نکلنے کے کام کو ویوہارک بنایا جا سکے اس بارے میں ہم نیٹو میں اپنے گھٹکوں سے پرامرش کریں گے امریکی راشٹرپتی نے 20 سال تک افغانستان میں اپنے سینکوں کے لمبے یدھ کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ان کا دیش افغانستان میں لمبے سمے تک نہیں رہنا چاہتا ہے البتہ ان 20 برسوں میں امریکیوں نے افغانستان میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو شوکا کل کیا ہے لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا عزتیں لوٹی گئی شادی کے سماروہوں پر حملہ کیا گیا بچوں بوڑھی مہیلاؤں بوڑھوں نو وواہتا لڑکیوں اور دلہے کی ہتیائیں کی گئیں
نو عروس نو داماد قربانی شدہ
طالبان نے بھی جو بائیڈن کے بیان پر کڑی پرتکریا دکھائی ہے طالبان نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے امریکہ کے سمجھوتے کا الگھن اور افغانستان میں جنگ جاری رکھنے کا چن قرار دیا ہے البتہ یہ صرف امریکی نہیں ہے جنہوں نے افغانستان میں اپنے وفل ابھیان کے جاری رہنے کی بات کہی ہے بلکہ جرمنی نے بھی جس کے امریکہ کے بعد افغانستان میں نیٹو کے بلوں کے پریپریکش میں سب سے ادھک سینک ہیں ان 1 سال تک افغانستان میں اپنے سینکوں کی اپستھتی کی سیما بڑھا دی ہے ایسی استھتی میں جب ودیشی سینک افغانستان میں اپنی سین اپستھتی کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں افغانستان کی سرکار نے ودیشی سینکوں کے اس دیش میں رکنے یا نکلنے پر پرتکریا جتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمے دیش میں 96% سین ابھیان افغان سینکوں کے مادھیم سے چلائے جا رہے ہیں کابل سے آئی آر آئی بی کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ
وشو سواستھ سنگٹھن نے ویکسین تیار کرنے والے دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دنیا کے غریب دیشوں کو کورونا کی ویکسین مفت میں اپلبدھ کرائیں ایک رپورٹ سنیے محمد علی قمی کی زبانی
ڈبلیو ایچ او کے پرمکھ ڈاکٹر ایڈہانوم نے وشو سمودائے سے غریب دیشوں کو کورونا ویکسین سہایتا سوروپ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے 20 غریب دیشوں کے لیے کورونا ویکسین کی 1 करोड़ डोज की जरूरत है। उन्होंने वैक्सीन की प्राप्ति की वैश्विक होड़ की आलोचना करते हुए कहा कि यह होड़ गरीब देशों के लिए कोरोना की वैक्सीन की उपलब्धता में विलंब का कारण बन रही है और इसके खतरनाक नतीजे निकलेंगे। डॉक्टर एडहानोम ने कहा कि कोरोना के टीके की उपलब्धता में विलंब के परिणाम स्वरूप गरीब देशों में लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इससे पहले विश्व व्यापार संगठन की नई प्रमुख ओकोंजो इवीला ने भी धनवान देशों को सचेत किया था कि गरीब देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने में देरी की स्थिति में दुनिया को इसके नकारात्मक परिणामों और खतरों का सामना करना पड़ेगा। ये चेतावनियां ऐसी स्थिति में दी जा रही हैं जब यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वेंडर लेयेन ने कहा है कि यूरोपीय संघ के देशों की ओर से कोरोना वैक्सीन की प्राप्ति के लिए कड़ा दबाव डाला जा रहा है, इसलिए गरीब देशों को ये टीका फिलहाल नहीं भेजा जा सकता। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी अपने ऑनलाइन सम्मेलन में यूरोपीय देशों में तैयार की जाने वाली वैक्सीन को अन्य देशों को निर्यात किए जाने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका को यूरोप में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन को अन्य देशों को निर्यात करने का हक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की डिमांड पूरी होने तक इस कंपनी की एक भी डोज किसी भी अन्य देश को नहीं दी जाएगी। यूरोपीय संघ का कहना है कि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूरोप का ऑर्डर पूरा किए बिना ही यूरोप में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज ब्रिटेन को भेज दी हैं, जो अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ की पॉलिसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता में यूरोप के लोगों को अन्य देशों के लोगों पर प्राथमिकता हासिल है और जब यूरोप की जरूरत पूरी हो जाएगी तभी अन्य देशों को कोरोना का टीका दिया जा सकता है। यूरोपीय देशों के इस भेदभावपूर्ण रवैये पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं की ओर से कोई प्रभावी और ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
और अब रुख करते हैं भारत का। कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर कश्मीर की वर्तमान चिंताजनक स्थिति को बदलना है तो नई दिल्ली सरकार को अपनी नीतियों को बदलना होगा। इस बीच कश्मीर में कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीर की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए नई दिल्ली को अपने फैसले बदलने होंगे। श्रीनगर में पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव अली मोहम्मद सागर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के 5 अगस्त को जो घटना घटी उससे उनके अनुसार कश्मीरियों के दिल काफ़ी चलने हुए हैं और हमारा ये मानना है कि अगर इसमें सुधार की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर कश्मीरियों को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने बार बार नई दिल्ली से ये प्रार्थना की कि वो इस हवाले से अपनी पॉलिसियों को तब्दील करें परंतु हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन हमारा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि वो अपनी नीतियां तब्दील करें। इस बीच श्रीनगर में आज एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो नई दिल्ली की पैदावार है ने माइनिंग एंड जियोलॉजी के डिपार्टमेंट के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला श्रीनगर के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ मीर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को यूटी बनाने के बाद स्टोन क्रशर्स को जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए मौजूदा प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा
5 अगस्त का जो 2019 से सानिया यहां पर हुआ उस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी गवर्नमेंट ने महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक माइनिंग पॉलिसी लाई जो पॉलिसी हम मानते हैं कि वो एंटी पीपल पॉलिसी है। यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ रही है इस बैन की वजह से, क्वेरीज की बैन की वजह से और एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से ना देने की वजह से जो डिपार्टमेंट का एटीट्यूड रहा है वो एंटी पीपल रहा है।
इस बीच कोरोना वायरस के हवाले से भी केसों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसने तश्वीशनाक स्थिति पैदा की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से आह्वान किया है कि वो उन नियमों का पालन करें जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनके लिए दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 212 के निकट व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जबकि दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है नवरोज के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, ईद नवरोज के उपलक्ष्य में आपकी सेवा में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम नवरोज की खुशियां और हजरत इमाम महदी अलैहि सलाम के प्रकट होने की प्रतीक्षा के आनंद के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जिस तरह से बाहर प्रकृति के पुनर्जीवित होने का कारण बनती है, उसी तरह मानवता के अंतिम मोक्षदाता हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम समाज को जो अत्याचार और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पुनर्जीवित करेंगे और समाज में काफी बदलाव करेंगे। इंसानों के मुरझाए हुए दिलों और अज्ञानों में सूझबूझ और ज्ञान के दीप जला देंगे। जब हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम प्रकट होंगे, तब इंसानी समाज अपनी संस्कृति और सभ्यता के चरम पर होगा और समाज में फैली बुराइयां खत्म हो जाएंगी और लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार के समाज में जीवन बिताना कितना अच्छा और आनंदमय होगा।
जी हाँ दोस्तों, सारी दुनिया का ज्ञान रखने वाले ईश्वर ने दुनिया की रचना की और दुनिया की रचना इस ढंग से की कि ये इंसान के कब्जे में रहे और इंसान बेहतर जीवन गुजारने और इस दुनिया से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए इसे भरपूर लाभ उठाए। महान व कृपालु ईश्वर ने इसी को देखते हुए बाहर की सुंदरता और उसकी विभूतियाँ इंसान के हवाले की हैं, ताकि वो सृष्टि से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को पूरा कर सके।
इस दुनिया को पैदा करने वाले ईश्वर की अनुकंपाएं और कृपाएं भी असीम हैं। वो नेक बंदों को भी देता है और उसकी बातों को इनकार करने वालों को भी देता है। वो मोमिनों को भी देता है और अनेक ईश्वरवादियों को भी देता है। वो अच्छे लोगों को भी देता है और बुरे लोगों का भी पेट भरता है। वो सज्जन लोगों को भी अपने विस्तृत दस्तरखान से देता है और उद्दंडी भी उसी दस्तरखान से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। बाहर दुनिया में ईश्वर का खुला हुआ दस्तरखान है और कृपालु व दयावान ईश्वर ने दुनिया में इसे बिछाकर अपनी कृपा, दया, प्रेम और मोहब्बत का असीम परिचय दिया है।
पवित्र कुरान के सूरे रोम की आयत संख्या 50 में ईश्वर मरने के बाद ज़मीन को दोबारा जिंदा करने को अपनी कृपा और दया की निशानी करार देते हुए कहता है कि अब तुम ईश्वर की कृपा की निशानी देखो कि वो किस तरह ज़मीन के मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देता है। बेशक वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वही हर चीज़ पर सक्षम है।
जी हाँ दोस्तों, बसंत ऋतु ईश्वर की कृपा और दया का प्रतीक है। ईश्वर ने बसंत की हर चीज में एक संदेश दिया है। वो चाहता है कि अपने बंदों के लिए अच्छा सा संदेश भेजे। वो चाहता है कि दुनिया में रहने वाले हर एक उसके इस फैले हुए दस्तरखान से लाभान्वित हों। जब ईश्वर ने हमारे ऊपर इतनी زیادہ کرپا اور دیا کی ہے تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
دوستو, مول روپ سے چیزوں سے آنند اٹھانا انسانوں کی وشیشتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ کھائے پیئے, موز مستی کرے, سوئے ٹہلے, یہاں جائے وہاں جائے, اپنے دوستوں اور نکٹ ورتیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. انسان ان سب چیزوں سے آنندت ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں جتنی بھی ہو سکے موج مستی کرے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے آنند نہ اٹھائے جنہیں وہ انجام دیتے ہیں, وہ انسان اوسار کا شکار ہوتے ہیں. ان کی زندگی ایک ہی ڈھرے پر چلتی رہتی ہے اور ان میں خوشیوں اور چاہتوں کی کمی ہوتی ہے. اسلام دھرم بھی اس بات پر بل دیتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے کام سے زیادہ آنند اٹھانا چاہیے.
روچک بندو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نشچتنا کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دنیا میں استتو میں آنے والے نئے ماحول سے دور نہیں رہنا چاہیے. اس زمین نے اپنے دان ویرتا کا دامن کھول کر ایشوری کرپاؤں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم ایسے ہی چپ چاپ اور خاموشی سے اس کا نظارہ نہیں کر سکتے, بلکہ سب سے پہلے تو ایشور کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان انوکمپاؤں سے کس طرح سے لابھ اٹھایا جانا چاہیے, کیونکہ ایشوری انوکمپاؤں کا آبھار ویکت کرنا تبھی ہوگا جب ہم صحیح ڈھنگ سے اور صحیح سمے پر اس کا آبھار ویکت کریں گے. ہمیں بالکل اسی طرح کرنے کا پریاس کرنا چاہیے جس طرح ایک صحیح انسان اور ترک سنگت انسان ویوہار کرتا ہے.
دوستو, اسلام آنند اور مزے لینے کا ورودھی نہیں ہے اور اس نے قانونی اور حلال مزے لینے پر بل دیا ہے اور اس پر خدا بھی راضی رہتا ہے. یہاں پر روچک بندو یہ ہے کہ اسلام نے بندوں کے لیے جو آنند اور مزے رکھے ہیں اس کے لیے کچھ نیم بنائے ہیں اور اس نے اس کے لیے آنندوں کو حلال اور حرام میں وبھاجت کیا ہے. اسلام دھرم ان آنندوں اور مزے کو حلال اور قانونی سمجھتا ہے جسے اسے اس کے آس پاس اور اس کے ساتھیوں کو کسی بھی پرکار کا جانی و مالی نقصان نہ پہنچے اور اس کی عزت بچی رہے. یہ آنند نہ کیول اس دنیا کے لیے بلکہ پرلوک میں بھی اس ویکتی کو فائدہ پہنچانے والا ہو اور اس کی تباہی کا کارن نہ بنے.
واستو میں اسلام دھرم ان آنندوں اور مزے کا سمرتھن کرتا ہے جو انسان کو اس کی پریپورتا اور اس کی یوگیتا تک پہنچانے کے لائق ہو. اسی طرح اسلام دھرم ان آنندوں کا ورودھ کرتا ہے جو انسان کے لیے ہانیکارک ہوں. ایشور نے کبھی بھی کسی چیز سے اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ وہ آنند کے لیے ہے. ایشور نے ان لوگوں تک کا ورودھ کیا ہے جو بیکار میں خود کو یا دوسروں کو ایشوری انوکمپاؤں سے ونچت کر لیتے ہیں. سورہ آراف کی آیت نمبر 32 میں مہان ایشور کہتا ہے, ہے پیغمبر, آپ پوچھئے کہ کس نے اس سندرتا کو جس کو ایشور نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پوتر آجیوکا کو حرام کر دیا, اور بتائیے کہ یہ چیزیں پڑھنے کے دن کیول ان لوگوں کے لیے ہیں جو سنسار میں ایمان لائے ہیں. ہم اسی طرح ایمان والوں کے لیے وسترت نشانیاں بیان کرتے ہیں.
دوستو, واسطو میں پوتر قرآن میں یہاں پر جس چیز کی نندا کی گئی ہے وہ کشنک خوشی کو ہمیشہ اور ملیوان خوشیوں پر پراتھمکتا دینا ہے. انسان کی بدھی اور ترک بھی اسی بات کی انومتی دیتا ہے. انسان اس خوشی کا چین کرے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے اور کچھ دیر رہنے والے خوشی کو چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والے خوشیوں کو اپنائیں. ایک مومن اور ایشور کی کھوج میں رہنے والے انسان کی نظر میں ایشور کی پرسنتا حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر وہ کام جو انسان کو ایشور سے نکٹ کرتا ہے یا اس کی مرضی سے نزدیک کرتا ہے بہتر خوشی اور مزہ سمجھا جاتا ہے.
دوستو, واسطہ میں سچا مومن وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ استھائی اور نیک کام کرنے کے بارے میں سوچے, نہ کہ جلدی ختم ہو جانے والے کاموں کے بارے میں. महान व तत्वदर्शीय ईश्वर सूरह आला की आयत संख्या 17 में एक आनंद को दूसरे आनंदों पर प्राथमिकता देने के लिए दो मापदंडों को बयान करता है और कहता है कि जब परलोक बेहतर और हमेशा रहने वाला है। इस आधार पर अमल के लिए दो मापदंड चुने गए हैं, एक नेक व भला होना और दूसरा स्थायी होना। इसमें पहले वाले में गुणवत्ता को बयान किया गया है जबकि दूसरे में उसके स्थायी होने की ओर संकेत किया गया है। हर दो मापदंडों के आधार पर प्रलय में इंसान की जिंदगी के आनंदों पर प्राथमिकता दी जाती है।
दोस्तों, वो मोमिन जो ईश्वरीय अनुकंपाओं के बारे में चिंतन मनन करते हैं और ईश्वरीय वचनों पर ईमान रखते हैं, वो मानवता के अंतिम मोक्षदाता हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। वो ये जानते हैं कि सारे भौतिक आनंद जिनके साथ सीमितताएं भी हैं, वो इमाम मादी अलैहिस्सलाम के प्रकट होने के काल में पाए जाने वाले आनंदों के सामने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि उस काल में हर एक उनके विशेष मार्गदर्शन से संपन्न होगा और उनके असीम छत्र छाया में पापों और दुनिया की बुराइयों से दूर होकर ईश्वरीय भय के शरण में होगा।
दोस्तों, जैसा कि महान व सर्वसमर्थ ईश्वर सूरह आराफ की आयत नंबर 94 में उन मोमिनों और ईश्वरीय भय रखने वालों को शुभ सूचना देता है जिन्होंने ईश्वरीय शिक्षाओं के आधार पर अपने आनंदों को व्यवस्थित किया है। ईश्वर कहता है कि और अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और तक्वा अर्थात ईश्वरीय भय अपना लेते तो हम उनके लिए जमीन और आसमान से अनुकंपाओं और विभूतियों के दरवाजे खोल देते, लेकिन उन्होंने झुठला दिया तो हमने उनको उनके कर्मों की पकड़ में ले लिया।
जी हाँ दोस्तों, इमाम मादी अलैहिस्सलाम के प्रकट होने के दिन से ही ईश्वरीय अनुकंपाओं और विभूतियों की बरसात होने लगेगी। मानवता के अंतिम मोक्षदाता के प्रकट होते ही आसमान भी बहुत सारी ईश्वरीय विभूतियों को इंसान के हवाले कर देगा और इंसान ईश्वर की असीम अनुकंपाओं से लाभान्वित होंगे। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सत्ता के काल में आसमान अपनी विभूतियों को ज़मीन पर उतार देगा और ज़मीन भी बेहतर ढंग से इन अनुकंपाओं को स्वीकार करेगी और इंसान को ताजगी और नए जीवन का उपहार पेश करेगी। तो दोस्तों, आइए हम सब खुद को और अपने समाज को उस पावन बेला के लिए तैयार करें ताकि ईश्वर की असीम विभूतियों से खुद को और अपने समाज को सुसज्जित करें। कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा के कनेकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम एक अमरीकी नागरिक विलियम रियो के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, इस्लाम आसमानी धर्मों में सबसे अंतमी आया, जो सबसे व्यापक आसमानी धर्म है। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, सामूहिक और अन्य प्रकार के मुद्दों पर विस्तार से बात की गई है। इस्लाम एक आसान और व्यापक धर्म है। इस बारे में एक फ्रांसीसी इतिहासकार एवं समाजशास्त्री गस्ताव ली बोन लिखते हैं कि इस्लामी एकेश्वरवाद में ही इस्लाम की प्रगति निहित है। इस्लाम किसी भी स्थिति में तार्किक बातों का विरोध नहीं करता। अन्य धर्मों में इसका उदाहरण नहीं मिलता। दूसरे धर्मों के बहुत से लोग जो इस्लाम को अपनाते हैं, उसका एक कारण इसका आसानी से समझ में आना है। इसकी शिक्षाएं आसान होने के साथ ही आकर्षक एवं तर्कसंगत हैं। अन्य धर्मों की तुलना में इस्लाम में ईश्वर के बारे में बहुत ही तार्किक ढंग से बात की गई है। इस्लाम की यही तार्किक बातें दूसरों के इस्लाम की ओर आकर्षण का कारण बनी है। इस्लाम की सरल एवं तार्किक शिक्षाओं से प्रभावित होने वालों में एक अमेरिकी युवा विलियम रियो भी हैं।
दोस्तों, जो लोग इस्लाम को गले लगाते हैं, वे लोग अपने अपने भविष्य और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बहुत सोच विचार के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लेते हैं। इस बारे में वे बहुत ही गंभीर होते हैं। इसी प्रकार के लोगों में से एक रियो भी हैं। अमरीकी नागरिक विलियम रियो का जन्म पूर्वी अमरीका के टेनसी राज्य में हुआ था। हाईस्कूल के अंतिम वर्षों में विलियम के दिमाग में ईश्वर के बारे में सवाल उठना शुरू हुए। सृष्टि बनाने वाले, संसार, प्रलय और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए रियो ने अब दूसरों से प्रश्न करने शुरू कर दिए। अपने सवालों के जवाबों के लिए उसने आम लोगों और धर्मगुरुओं से भी संपर्क आरंभ किया। इसी दौरान विलियम के एक क्लास फेलो ने स्थानीय मस्जिद के इमाम से उसे मिलवाया। इमाम ने विलियम को कई किताबें पढ़ने को दीं। जो किताबें विलियम को दी गईं, उनमें से एक मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान भी थी।
पवित्र कुरान ने विलियम रियो जैसे जिज्ञासु युवा की जिज्ञासा को पूरा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कुरान के बारे में वे कहते हैं कि मैंने कुरान को बहुत ही सुंदर पाया। उसमें बताई गई बातों ने मुझको बहुत प्रभावित किया। कुरान के बारे में विलियम की ये बात इस वास्तविकता को सिद्ध करती है कि कुरान की आयतों में कोई हेर फेर नहीं किया गया है। पवित्र कुरान का पढ़ना इस प्रकार है मानो ईश्वर आपसे बात करते हुए उसका मार्गदर्शन कर रहा है।
जैसा कि मशहूर है कि पुरानी आसमानी किताबों में फेरबदल किया जा चुका है, किंतु कुरान की तार्किक एवं मार्गदर्शक बातें उसके सही होने को सिद्ध करती हैं। अपने मुसलमान होने के बारे में विलियम कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान में ईश्वर को बहुत ही सरल ढंग से बताया गया है, जो सबकी समझ में आसानी से आता है। हालांकि पवित्र कुरान खुद कहता है कि ये लोगों के मार्गदर्शन की किताब है।
दोस्तों, अब ये हुआ कि रियो को अपने धर्म को सार्वजनिक करना था। वे कहते हैं कि धर्म ऐसी बात है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। डेविड कहते हैं कि मेरे मुसलमान बनने के बाद सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इसको मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। मैं ये सोचकर डर रहा था कि पता नहीं मेरी घोषणा पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, कहीं ऐसा न हो कि वे नकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगें। अभी मेरे लिए ये स्पष्ट नहीं था कि मुसलमान बनने के बाद मुझे अपने दोस्तों, अपने घर वालों और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना होगा। दूसरी बात यह थी कि अब कोई इंसान मुसलमान बन जाता है तो उसके बाद उसके कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जिनका वो निर्वाह करता है, जैसे रोजाना नमाज पढ़ना। यह ऐसा काम है जिसे लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ डेविड के साथ हुआ। वो मुसलमान बन चुका था। इस्लामी शिक्षाओं को अपनाना वो अपने लिए गौरव की बात समझता था। यही बातें उसके ईश्वर से निकट होने का कारण बनती।
दोस्तों विलियम कहते हैं कि मेरे घर वाले मेरे अंदर होने वाले परिवर्तनों को समझ रहे थे। मैंने सुबह उठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। मेरे नए मुसलमान दोस्त भी बन गए थे। मेरे घर वालों को मेरा ये बदलाव व्यवहार पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि मैं किसी दूसरे धर्म को अपनाऊं। दूसरी ओर मेरा संकल्प मजबूत था। मैं अपने नए रास्ते पर चल निकला था और किसी भी हालत में पीछे वापस होने को तैयार नहीं था। इसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे मेरे घर वालों ने मेरे नए धर्म को मान लिया। बाद में ऐसा हुआ कि रियो के घर वालों का व्यवहार भी बदलने लगा।
इस संबंध में अरियो की माँ का कहना है कि मैंने हमेशा ही रियो से कहा था कि जब भी किसी चीज का चयन करना तो सोच समझकर सही चीज का चयन करना। इस हिसाब से लगता है कि विलियम अरियो ने अपने धर्म का चयन करते समय अपनी माँ की बात को ध्यान में रखा था। रियो के व्यवहार के कारण धीरे धीरे उसके परिवार का दृष्टिकोण उसके बारे में बदलता चला गया। अब रियो के माता पिता और उसके धर्म अर्थात इस्लाम का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वे अब उसके समर्थक हो चुके थे।
दोस्तों रियो के पिता की तुलना में उसकी माता इस्लाम के संबंध में अधिक सकारात्मक विचार रखती थीं। वे कहती हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद विलियम के व्यवहार में भारी परिवर्तन हुआ। उसके भीतर सकारात्मक बातें अधिक पैदा हुई हैं। वो अब हमारी बात अधिक ध्यान से सुनता है। उसने स्वेच्छा से इस्लाम का चयन किया और हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझको लगता है कि मेरे बेटे ने सही फैसला किया है।
वास्तव में रियो के मुसलमान होने ने उसके परिवार के सदस्यों और मिलने जुलने वालों के लिए ये सिद्ध कर दिया कि उसका चयन सही है और उसने स्वेच्छा से बहुत ही अच्छे मार्ग का चयन किया है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुष्प्रचारों के कारण गलत मार्ग पर चल निकलते हैं और स्वयं भ्रष्ट मार्ग अपनाते हैं और दूसरों को भी इस पर चलने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि इसके विपरीत रियो जैसे कुछ लोग भी होते हैं जो समझदारी के साथ ऐसे मार्ग का चयन करते हैं जो दूसरों को भी पसंद आता है और उनके मार्गदर्शन का भी कारण बनता है।
स्वेच्छा से काम करने का अधिक लाभ होता है और स्वेच्छा से किया गया काम ही इंसान को सफल बनाता है। रियो ने स्वेच्छा से ही ऐसा मार्ग चुना जिसके बारे में स्वयं इस्लाम का कहना है कि धर्म के अपनाने में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है, बल्कि इसको स्वेच्छा से ही अपनाया जा सकता है। ये बात पवित्र कुरान के सूरह बकरा की आयत संख्या 256 में कही गई है कि धर्म को स्वीकार करने में कोई जबरदस्ती नहीं है और सही मार्ग पथभ्रष्ट मार्ग से अलग और स्पष्ट है।
रियो का ये सोचना है कि उसने तो सही मार्ग का चयन कर लिया है, अब दूसरों को भी ये रास्ता दिखा जाए। उसका कहना है कि इस्लाम की वास्तविकता के बारे में पश्चिमी संचार माध्यम वास्तव में भेदभाव से काम लेते हैं। वे मुसलमानों को आतंकवादी दिखाते हुए कहते हैं, हालांकि अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में होते हैं तथा किसी एक व्यक्ति की बुराई को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। रियो कहते हैं कि मुसलमान भी आम इंसानों की तरह हैं और उनको आतंकवादी कहना गलत है, क्योंकि इस्लाम स्वीकार करने के बाद मैंने इस हकीकत को समझा है। खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम विशेषकर अमेरिकी संचार माध्यमों में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान हिंसक होते हैं, जिसकी पुष्टि के लिए दाएश जैसे आतंकवादी गुट की गतिविधियों को पेश करके सारे मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। हालांकि दाएश एक भ्रष्ट संगठन है जिसे आम मुसलमानों का समर्थन हासिल नहीं है। इस्लाम तो कृपा और दया का धर्म है।
इस संबंध में सूरह आले इमरान की आयत संख्या 159 में ईश्वर कह रहा है कि हे पैगंबर, ईश्वरीय दया व कृपा के कारण तुम लोगों के लिए दयावान हो गए हो, और यदि तुम क्रोधी और कठोर हृदय व स्वभाव के होते तो लोग तुम्हारे पास से चले जाते, तो उनकी गलतियों को क्षमा कर दो और उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करो तथा कामों में उनसे परामर्श करो, परंतु जब तुम किसी कार्य का निर्णय कर लो तो उस पर दृढ़ रहो और ईश्वर पर भरोसा करो। निस्संदेह वो ईश्वर पर भरोसा करने वालों को पसंद करता है।
दोस्तों, ये आयत पैगंबर इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता अर्थात उत्तम शिष्टाचार की ओर संकेत करते हुए कहती है कि जो बात लोगों के तुम्हारे पास एकत्रित होने और तुम्हारे ऊपर ईमान लाने का कारण बनी है वो तुम्हारा कोमल स्वभाव व शिष्टाचार है। यदि तुम भी उन्हीं लोगों की भांति कठोर स्वभाव के होते तो कोई भी तुम्हारे पास ना आता और जो लोग ईमान भी ले आते वे बाद में पलट जाते। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोता, अभी आप कार्यक्रम नया सवेरा सुन रहे थे। एक महत्वपूर्ण सूचना नोट कर लें, कल से हमारा ये प्रसारण शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित किया जाएगा। तो हमें आशा है कि हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों व प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir, जबकि हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हसन अब्बास और साथियों को अगली सभा तक के लिए अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।